ये आकाशवाणी है। सामायिकी में प्रस्तुत है वर्तमान परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वित्तीय मामलों की जानकार प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल और पत्रकार सिद्धार्थ सिंह।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्वास जताया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की नंबर एक पोजीशन है। उस पर वो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी उसकी वो जो पोजीशन है वो कायम रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही आने वाले वर्षों में ग्रेट ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, और जापान के भी आसपास, ग्रेट ब्रिटेन को तो हम ओवरटेक कर लेंगे, साथ ही जापान के आसपास हमारी जो जीडीपी है, जो उसकी जो साइज है, वो जल्द ही हम जापान के बराबर होंगे। यामिनी जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि जो इस साल हमने लक्ष्य रखा है कि भारत की जो विकास दर है वो 7 से 8% के बीच में रहेगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं?
अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज, चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक, उन्होंने विश्वास जताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% से 7.5% के बीच में जो है ग्रो करेगी। और अगर आप देखें जो Q1 के जो नतीजे आए थे उसके अनुसार भी हम 8.2% के स्तर पे विकास हुआ था, और जो Q2 के नतीजे थे उसके अनुसार भी हम 7.1% के विकास दर पे थे। तो जो विकास दर है वो अच्छे नजर आ रहे हैं, और इसका कारण ये है कि जो कृषि के क्षेत्र है तो उसमें हम पॉजिटिव ग्रोथ पर है, 3.5% से ऊपर की ग्रोथ है। अगर आप इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें तो इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी आप 6.5% से ऊपर हैं, और अगर आप सर्विसेज सेक्टर भी देखें तो 7.5% से ऊपर हैं। निवेश की जो बढ़ोतरी है उसको देखें तो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो आपका 10% से ऊपर है, दूसरे क्वार्टर में 12% के आसपास था और पहले क्वार्टर में 10% के आसपास था, जो बड़े अच्छे से ये दिखाता है कि जो है हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरीके से रिफॉर्म्स लाए गए, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के द्वारा लाए गए, चाहे वो GST के द्वारा लाए गए, उन्होंने विकास दर के अंदर बढ़ोतरी दर्ज की है।
जेटली साहब ने एक बात और कही कि इसके बावजूद कि कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी आई, हालांकि अब थोड़ा सा कच्चे तेल के दाम गिरे हैं इधर हालिया दिनों में, इसके बावजूद जो डॉलर में मजबूती देखी गई, साथ ही जो हिन्दुस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में उनका ये मानना है कि हम फिर भी हम किसी भी तरह से जो हमारा वित्तीय घाटा है उसकी जो हमने एक लक्ष्य रखा है इस वित्त वर्ष में 3.3% ऑफ जो हमारी GDP का 3.3% पे हम उसको रोकना चाहते हैं, तो उनका ये कहना था कि इसको हम किसी भी तरह से पूरा करेंगे। हालांकि लोग ऐसी शंका व्यक्त कर चुके हैं कि शायद हम अपना जो वित्तीय घाटे का जो हमने लक्ष्य रखा है 3.3% का, उसको हम शायद इस साल ना मीट कर पाए। इसके पीछे जो ये कॉन्फिडेंस वित्त मंत्री का है कि हम अपना जो वित्तीय घाटा है उसको 3.3% पर रोक के रख सकेंगे, इसके पीछे क्या कारण लगते हैं आपको?
जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, वो करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल 1.9% था GDP का, और इस बार माना जा रहा था क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $86 पर बैरल पे पहुंच गई थी और आशंका थी कि जो है वो बढ़ जाएगा, तो माना जा रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट 2.9% ऑफ द GDP पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से रुपए में भी क्या मूल्य भी गिरता जाएगा। और जैसे आपने देखा 68 पर डॉलर से जो है 74 पर डॉलर पहुंच गया था, वैसे ही जो इम्पोर्ट है, जो हम अपने देश के अंदर सामान लाते हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जाएंगी, तो इम्पोर्ट बिल बढ़ता जा रहा था। उस इम्पोर्ट बिल के बढ़ते ही जो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है और बढ़ रहा था, क्योंकि रुपए गिरता जा रहा था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही थी। पर यह माना जा रहा था कि एक टेम्पररी फेज है, क्योंकि जो है US का शेल से जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी और जो है OPEC के जो सप्लाई है, जो वो कह रहे हैं कम करेंगे, वो जो है धीरे धीरे करके कम ना करके उसे बढ़ाएंगे। इस वजह से ये माना जा रहा था कि जो है कच्चे तेल की कीमतें किसी तरीके से स्थिर हो जाएंगी, जो अब स्थिर हो गई हैं, उनके अंदर कमी भी नजर आई है। पर अभी ही हाल ही में 6 दिसंबर को OPEC की मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि जो है वो, क्योंकि वो ऑयल से ही सबसे ज्यादा कमाते हैं, वो चाहेंगे कि ऑयल की सप्लाईज जो है फिर से कम की जाए और कच्चे तेल की कीमतें जितनी बढ़ा करके मुनाफा कमाया जा सके वो कमाएं उसके ऊपर। तो इसलिए अभी भी उसके ऊपर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि जो है सप्लाईज जो है वो कम होने की आशंका है। लेकिन जब तक स्थिति कच्चे तेल की जो है नियंत्रण में है और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती तब तक करंट अकाउंट डेफिसिट पर बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, इसलिए जो है माना जा रहा है कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कर पाएंगे।
ऐसे समय में जब करंट अकाउंट डेफिसिट पे दबाव हो, रुपए पे दबाव हो, साथ ही कच्चे तेल की कीमतें हालांकि थोड़ा स्थिर हुई हैं या कम हुई हैं, ये बात भी सत्य है, लेकिन ऐसे में एक विषय जो बहुत इस समय चर्चे का विषय है वो है क्रेडिट एंड लिक्विडिटी, यानी कि बाजार में पैसे की कमी की बहुत बात की जा रही है। ये सरकार भी इसको बार बार, वित्त मंत्री की तरफ से भी ये बात बार बार उठाई जा रही है और यही बात सरकार की तरफ से बार बार रिजर्व बैंक को भी बोली गई है कि ये जो कमी है क्रेडिट और लिक्विडिटी की जो बाजार में हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं वो सामने आई है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट्स के जो बैलेंस शीट है उस पर बहुत ज्यादा कर्ज है और वो और कर्ज नहीं उठा पा रहे या और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। ऐसी बैंकों ने जो कर्ज दिया है उनके पास वो कर्ज वापस नहीं आ रहे, तो उनके ऊपर काफी दबाव बना हुआ है बैंकों की बैलेंस शीट पे भी और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स पे, कि जिसकी वजह से ना तो वो कर्ज दे पा रहे हैं और ना ही उनके पास कर्ज वापस आ रहा है। माना जा रहा है कि जो एनपीए लेवल्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ करके 11 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं और जो 11% ऑफ द टोटल एडवांसेज हैं, जिसकी वजह से जो है जो बैंक्स हैं वो और जो है लेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास उनका पैसा वापस नहीं आ रहा है। इस सरकार ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ला करके कोशिश की है कि जो कॉर्पोरेट्स अपना कर्जा नहीं ला पा रहे उन्हें इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत रिस्ट्रक्चर किया जाए और बैंकों को उनका पैसा वापस दिलाया जाए। सरकार की कोशिश ये भी रही है कि जो लोग पैसा लेकर के भाग गए हैं, जैसे विजय वाल्या है या नीरव मोदी हैं या ऐसे और कर्जदार हैं, उनको जो है भारत में ला करके वापस लाया जाए और जो है उनसे पैसा जो है वसूला जाए, तो कोशिश ये की गई है। इसी के दौरान सरकार ने ये भी कोशिश की है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें रिकैपिटलाइज किया जाए। तो 88,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइजेशन जो है बैंकों में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत बैंकिंग में लिक्विडिटी आएगी। जो एक सबसे बड़ा क्राइसिस आया वो आईएलएफएस के डेट डिफॉल्ट की वजह से आया, जिसको हमारे देश में भी किसी तरीके से माना जा रहा था कि वो लेमन मूवमेंट है जो यूएस में हुआ था, जिसकी वजह से बैंकिंग क्राइसिस हो जाएगा। आरबीआई ने भी आश्वासन दिलाया कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं और जो हाउसिंग कंपनीज हैं, अगर उन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई उन्हें कम दरों पे मुहैया कराएगा, जिसके तहत आरबीआई ने भी 12,000 करोड़ लिक्विडिटी में डाला है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ये भी माना जा रहा है कि इस लिक्विडिटी क्राइसिस के दौरान सरकार ने और आरबीआई ने कहा है कि जिस भी जगह पे जरूरत होगी वो वहां पे पैसा दिलाएंगे।
यामिनी जी, एक और जो विषय जो कहा जा रहा है ये कि हम 7 से 8% तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके बियॉन्ड जाना है, 9-10% की तरफ बढ़ना है, तो नए एरियाज हमें देखने होंगे जहां सरकार को रिफॉर्म्स करने होंगे।
जी, अगर आप देखें तो इस सरकार जब से आई है काफी रिफॉर्म्स की बात की है और काफी ऐसी स्कीम्स की बात की है जो जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे ही डिजिटलाइजेशन, ताकि जो है इकोनॉमी ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सके और कम से कम पैसे पे करे, उसकी बात की गई हो, 11 पेमेंट बैंकों को अप्रूवल्स देने की बात की गई हो। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का मानना है कि अगर देश को और तेजी पे जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि लेबर रिफॉर्म्स लाए जाएं, लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं और जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए जाएं।
हम आशा करते हैं कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक डिसिसिव लीडरशिप बनी रहेगी और आने वाले समय में नए क्षेत्रों में सरकार और तेजी से रिफॉर्म्स लाएगी और भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के जो उसकी नंबर एक की पोजीशन है उस पर कायम रहेगी। धन्यवाद।
धन्यवाद।
सामायिकी में अभी आप सुन रहे थे वर्तमान परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वित्तीय मामलों की जानकार प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल और पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com।